इसीलिए आयत 99 में वलकद अनज़लना इलैक आयातिम बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल की आपकी तरफ आयातिम बय्यिनात। अगर इन दोनों का वाहिद करो ना तो आयतुन बय्यिनतुन। देखिए एक लफ्ज की भी जमा होती है ना तो दो की भी है। आयात पीछे बहुत दफा बात हुई है, निशानी, साइन बोर्ड। आप नौश में क्या कहेंगे? शिल्त। शिल्त क्या करती है? उसको देखकर आप उस जगह पहुंच जाएंगे। यहां से गार्डेमोन की शिल्त देखें और एयरपोर्ट पहुंच जाएं। ये कुरान की आयतें किस चीज का रास्ता दिखाती हैं? हर आयत आपको अल्लाह का कुर्ब देती है। आप मुतासिर हो जाते हैं ना किसी की खूबसूरत चीजों को देखकर, कहते हैं हाई इसने बनाई, ये आइकिया कंपनी की बनी हुई, ये किया कि ये फलां की है। आप इंप्रेस होते हैं। कुरान की हर आयत एक माइलेज स्टोन है अल्लाह से कुर्ब का। क्लियर है, बय्यिनात है, ठकी छुपी नहीं। पता नहीं ठीक है कि नहीं, गलत है, कर लो तो भी ठीक, ना ना तो नहीं चाहिए, पर आज के दौर में रह भी नहीं सकते। बस ये स्टाइल तबलीग का अगर आप किसी का सुने, फौरन कट ऑफ कर दें। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, लोग ना सुने दीन की बात, ये कम गुमराही है। ऐसी लोरियें और बातों को कम और ज्यादा और मुबहम और हालात से और एक्चुअली एक्चुअली दिस कहने वाले मीठी छुरियां, हक का गला कट जाती हैं। ना सुने, दुआ करें अल्लाह हक की बात सुनवाए, वो सुनवाए जिसके बाद तसल्ली झूठी ना हो, सच हो। लेकिन आधी बात उधर की करके आधी उधर की करके कह देना ये ठीक है वो, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। वमा यकफुरु बिहा, हाँ ये बड़ी अहम बात है, और नहीं कुफर करते इसका। मैं आपसे पूछने की जरूरत कर सकती हूँ, इजाजत है कि हाँ क्या इधर? आयातिम बय्यिनात। हालांकि देखिए जमा है, अब आपको अभी तो नहीं समझना वाह है जमा की, ठीक है। हा मुअन्नस की जमीर है, एक चीज मुअन्नस में कह सकते हैं वाहिद गायब मिसाल है, लेकिन यहां तो है आयातिम बय्यिनातिन, तो यहां क्या होना चाहिए था? हा हुमा हुन्ना। यहां क्या होना चाहिए था? वमा यकफुरु बिहुन्ना। अगर जिनको थोड़ी सी ग्रामर आती है, पीछे जमा है आयातिम बय्यिनात, आगे हा वाहिद की कह दी, वजह अल्लाह की एक आयत का इनकार भी सारी आयतों का इनकार है। किन को तौफीक होती है अल्लाह की खुल्लम खुल्ला आयतें बय्यिनात, नूर वाली आयतें? आप देखिए सूरत नूर तो शुरू ही इस बात से होती है, किन को तौफीक होती है अल्लाह के वाज़े हुक्मों को ना मानने की? इल्लल फासिकून, मगर फासिकों को। ये जो फसक का लफ्ज है ना, पीछे भी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा इसको एक नया डायमेंशन आज दिखाना चाहूंगी आपको। फसक कहते हैं किसी चीज से फट के निकलना। आपने कभी बहुत पके हुए केले देखे? दरख्त पे एक फल लगा हुआ है और वो ओवर राइप हो गया है और आपने उसको उतारा ही नहीं है, तो बाद दफा वो अपने वजन से फट जाता है। केला है तो वो उसके चीर पड़ जाते हैं और चीर में से फिर काला हो जाता है, पता चला कि उतारा नहीं था। इसी तरह आप देखिए कि जैसे अनार हैं, अगर दरख्तों पे लगे रहें तो बाद दफा चिर जाते हैं। इस कैफियत को फसक कहते हैं, फल का अपने खोशे के अंदर से निकलना। तो फासिक वो है, याद है पीछे, الَّذِينَ يَنْكُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ الحمدللہ تین صفات زبانی یاد ہیں آپ کو بھی کہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ عہد توڑتے ہیں اور فساد کرتے ہیں اور اسی طرح سے نقض عہد کرتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ کھلم کھلا گناہ کرنے والے، گناہ کر کے نہ شرمانے والے۔ यानी ये कुरान इतना क्लियर है कि इसका इनकार बस वही करेगा जो लोगों के अंदर अपना नाम बुरा रखने से भी शर्माता नहीं है। थोड़ी सी शर्म हो ना, मुनाफिक को थोड़ी सी शर्म होती है, आपको पता, दिल का रोग है। लोग मुझे अच्छा के मौलवियों के पास जाऊं तो मैं मौलवी दिखूं, और मैं किसी प्लेबॉय को देखूं तो मैं उसकी जैसा लगूं। वो बेचारा फिर भी कहीं ना कहीं अपनी इज्जत रखता है। फासिक कहता है किसी को क्या लगे, मेरा जिस्म है, मैं जैसे मर्जी यूज करूं। अल्लाह ने दिया है हुसन, है देखने की चीज, बार बार देखो दिखाओ। तो फासिक वो है जो रिवेलियस है खुल के, और इसमें सब वो लोग जो दुनिया में गंदगी फैलाते हैं, अपना हर काम अल्लाह की नाफरमानी का करने वाली। तो क्या पता चला कि फासिकों को ये जरूरत होती है कि सीधी सीधी आयतों का इनकार कर दे, और अल्लाह ताला हम सबको भी इससे बचा के रखे। सवाल लिखिए, अल्लाह की किताब वालों का बिगाड़ कहां से शुरू होता है। देखिए ना, जिस कौम के किस्से आप और मैं पढ़ रहे हैं, हमसे नए तो नहीं है। अभी तक जो कुछ पीछे यहूद के नाते से हम पढ़ चुके, तो कहां से आगाज होता है? चार पांच चीजें नोट करें। नंबर एक, आखरत की निजात का इन्हिसार नेक कामों की बजाय बेअमली में तलाश करने से। क्या कहते थे वो? हम जन्नत में जाएंगे चाहे जितने मर्जी भी बुरे काम करें। हाँ, लन तमसन नारो इल्ला अय्यामा मादूद। मसलन, अल्लाह का कलाम अमल की पुकार है, मगर जब किसी कौम पर जवाल आता है तो इसके अफराद मुकद्दस कलाम लिख कर या जुबान से बोल लेने को बरकत का जरिया बनाते हैं। तो अल्लाह की किताबों की हामिल कौमों पे बिगाड़ कब आता है? जब हिदायत की किताब को बरकत की किताब बना लेते हैं। फिर तीसरी चीज, जुबान से सिर्फ चंद लफ्ज बोल लेने या याद कर लेने से जन्नत हासिल करने का गुमान रखते हैं, और इस कलाम से फिर दुनिया ही हासिल करने की कोशिशें करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बुजुर्गों से अकीदत रखने ही को कामयाबी का जरिया समझने वाले बुजुर्गों की रूहों से ताल्लुक कायम करके दुनिया के मसाइल हल करने लगता है। यानी नेक लोगों से बस मोहब्बत करो, निस्बत कायम रखो। फलां बुजुर्ग है, मैंने उनका पल्लू पकड़ लेना। फलां बाबा जी हैं, बस उनके कहना चाहिए, बुजुर्गी के साथ आ जाओ, उनके नाम की नजर नियाज दो। और फिर अगली बात है कि वजीफों पर यकीन करने वाले लफ्जों की अदायगी से उम्मत को कामयाबी की राह पे देखते हैं। तो सारी बात इधर जो पूरी हुई, एक टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, जिसमें यह बता दिया गया कि अल्लाह ने कौमों के लिए क्या कुछ किया। थोड़ा सा आगे चलिए। अब अकुल्लमा, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ? यानी क्या जब कभी, कुल्लमा जो है ना, एक लफ्ज होता है उर्दू में वेन एवर, अगर आप अपने जहन में कहते ना वेन एवर, एक लफ्ज होता है नेवर और एक उसका ऑपोजिट होता है नेवर। जब कभी भी उन्होंने ये किया, क्या आहदू, कोई आप में से बता सकता है ये लफ्ज आ की लंबी अलिफ ऐन क्या हमें बता रही है? ऐन की लंबी अलिफ क्या बता रही है? मुआशरा, मुकाबला, मुनाजरा, मुबाहला, दो के बीच में, यानी इंटरचेंज। जैसे मुआशरा, आशरा रहना, तो मुआशरा मिलजुल के रहना। आहदू में क्या, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आहदन को एक अहद, नबजहू फरीक मिनहुम, फेंक देता है उसमें से एक गिरोह उनमें से, यानी अहद करते हैं फिर एक गिरोह तो उसको फेंक ही देता है। बल अक्सर हम ला युमिनून, और अक्सर तो ईमान ही नहीं लाते। इतनी खूबसूरत आयत है ना, किसका हक देना बड़ा मुश्किल लगता है। आ वा कुल्लमा, इतनी जरूरत ही नहीं थी लंबी बात की, कुल्लमा भी बहुत था। जैसे आप कहते व्हेन इट हैपेंड, फिर आप थोड़ी सी बात बड़ी करके कहते व्हेन एवर इट हैपेंड, फर्क है ना। तो आवा कुल्लमा में शिद्दत से बताया जा रहा है कि जब भी हुआ। जैसे आप अपने बच्चों को गुस्से में डांटती ना, मैं तुम्हें जब कोई काम कहती हूं तुम नहीं करते, मैं जब तुम्हें बुलाती हूं तुम नहीं आते। एक ये, मैं जब आपको बुलाती हूं आप नहीं आते, लेकिन फिर आप उसमें अपनी एक टोन शामिल करते हैं, मैं जब तुम्हें कोई काम कहती तुम नहीं सुनते, बात क्या है? डांट आई। या वह कुल्ला माँ को अगर आप हटा देना तो डांट की वो शिद्दत वाले गुस्से के लफ्ज निकल रहे हैं। बस इतना ही समझ लें कि तुम्हें हो क्या गया। पीछे देखिए, दो तीन बार ये बात गुजर गई है ना कि मीसा कल्लजी वासाकुम, आगे भी आएगा, मीसाक की बात हुई ना, खुजू मात इनाकुम की बात हुई, अखस न मीसाकुम की बात हुई, अब यहां डांट है, तुम्हें हो क्या गया। अब मैं अगर आपको टोन से समझाना चाहूं ना, तो यह आयत ऐसी है, अल्लाह गुस्से में आके कह रहा है ये तुम्हें हो क्या गया है, वो बनी इसराइलियों और आज के मुसलमानों को अगर आप उसमें लगाए, ये तुम्हें क्या मसला है? जब आप कहते हो आज के बाद ये नहीं करूंगी, फिर करती है, आज माफ कर दें अगली दफा नहीं करूंगी, फिर वही आदत है, अब लेट नहीं आऊंगी फिर लेट आती है, अब देर से नहीं छोड़ूंगी फिर देर से छोड़ती है, ये चक्कर क्या है आपके साथ? यानी तुमने अल्लाह के अहद को एक खेल बना लिया। यह एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, नबजा। आप कहते हैं नबजा फेंकना, अरबी जुबान में नबजा होता है टूटने का ना मतलब। ये क्या बात हुई? जब कोई चीज फेंके तो टूट जाती है ना, ऐसे ही ना, प्लेट आप जोर से फेंकेंगी ना तो टूट जाएगी। इसी से देखिए नबीज, कितनों को पता है नबीज क्या होती है? आप लोगों ने कभी नबीज नहीं बनाई? देखिए खजूर को पानी में भिगो देते हैं, रात भर बड़ी रहती है, फिर अगले दिन उसको घोट ले। मशरूब है एक नबीज, ये भी लफ्ज है वही, नबसा से नबीज। खजूर को फेंकते, थोड़े से पानी में सोक कर दी, फिर अगले दिन करे और आपको तो बेस्ट मशरूब है, आप पी के देखें। खाली खजूर खाएंगे तो गर्म, उसकी तासीर हीट वाली होती है, कई लोगों की तबीयत गर्मी वाली होती है उनको फायदा नहीं देती। 3 खजूरें रात को ले लें, इसी में आपको तरकीब भी बता दो, 4 खजूरें रात को 1 ग्लास पानी में डिप कर दें, सुबह तक वो भीगे होंगे ना, आप देखेंगे तो ऐसे खुल जाएंगी, फटने की कैफियत है, फटने के लफ्ज है इसमें। फिर उसको हाथ धोकर आप उसकी गुठली निकाल लें, चाहे तो हाथ से या चम्मच से मैश कर लें, फोक से कर लें, या आसान चीज अगर बच्चों को पिलानी है उसको ब्लेंडर में डालें और उसको 2-4 बर्फ की टुकड़ियों के साथ ब्लेंड कर लें। इतनी सेहतमंद और इतनी मजे की, मीठा पानी होता है, आप उसमें 2-4 कतरे लेमन जूस के डाल दें, सुबह उठ के खाली पेट पिए, इतनी बीमारियों का इलाज है, वही लफ्ज है। या आप उसमें ना रह जाएं, वापस इधर आ जाएं, तरकीबों पे तो आप इतने कान खोले कि आई विश कि आप हर आयत के जुमलों पे ऐसे खोले, लिख भी लिया होगा जल्दी से, लेकिन ये बना के पिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बेकार दूसरी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक और काले नीले पानी, इससे अवॉइड करते हुए इन चीज़ों को मारूफ कराएं, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि जब भी अहद करते हो तो तुम क्या करते हो, अब लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन बात समझाने के लिए बोलना चाहूँगी, मुँह पे मार देते हो। आप कहते हैं ना ये बात आपके मुँह पे मारती हूँ, मुँह फट होना, ये मुराद है। अहद बांधते तो हो, फिर पूरे नहीं कर पाते तो उसको फेंक देते हो, यानी बदतमीजी करते हो। मुझसे नहीं होता, मैंने 10 दफा ये बात कह दी है, 11वीं दफा भी यही कह रही हूं। यानी उनके मजहबी रहनुमाओं का ये हाल था कि वादे करते, कमिटमेंट्स करते, इरादे करते, लेकिन वक्त पड़ने पे उसको आपके मुंह पे मार के चले जाते, हमसे नहीं होता, कर लें जो करना है। बल अक्सर हमला यो मिनोन, बल्कि अक्सर तो नहीं मानते। अच्छा यहाँ फरीक व मिनहुम बड़ा अहम है, सारे नहीं है, ये गिरोह है। और ये कौन सा फरीक है? इनके बड़े सरदार। जब किसी कौम के बड़े वादा शिकन या फिर अहद शिकन हो जाते हैं ना, तो कौमों को तो खुली छुट्टी मिल जाती है, वो कहते फिर हमें तो सर्टिफिकेट मिलता है कि हम अपने बड़ों को फॉलो करें। तो जहां अल्लाह आपको किसी बड़े मनसब पे ले जाए ना, तो अपने आप को अपना ना समझें, दूसरी तरफ ले जाए और फिर आप देखें कि ये क्या बात है, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला यहां बताएंगे। अल्लाह ताला से मैं वही उलमा को जो जिब्राइल की दुश्मनी का बहाना बनाकर खुद भी और अपनी अवाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नबी से दूर किया तो किससे दूर किया? कुरान से। देखिए आज कोई किसी दीनदार से आपको रोके तो असल में उसके जरिए जो कुरान है उसी से रोकता है ना। फलां को ना सुनना, यानी मुराद फलां से कुरान को ना सुनना, कितनी जरूरत की बात है। बस दफा लोग नामों में उलझ कर लोगों को कुरान से रोक रहे होते हैं, इन्होंने भी यही कुछ किया। अल्लाह ताला उसी पे ये डांट दे रहे हैं कि तुम क्या बातें करते हो, लोगों को छोड़ते हो इस तरह से। और ये जो फासिक है ना, हर हद को फलांगना, ये वो शख्स होता है जिस पर ना तो नसीहत काम करती है, ना कोई अकली दलाइल उसको अच्छा लगता है, ना इबरत उसके अंदर जाती है, हर हद को फैलांगते हुए आगे से आगे चले जाता है। अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि देखो नबी की सूरत में इतना प्यारा नमूना तुम्हारे पास था लेकिन तुमने उनको भी नहीं माना। मक्का वाले 70 दुश्मनियों के बावजूद नबी के किरदार पर बात नहीं कर सके, तुम्हें इस शख्स में इतने ऐब नजर आते हैं, हर आए दिन तुम उनके बारे में बात करते हो, तो लिहाजा तुम अपने आप को ठीक करो। मक्का में 13 साल अल्लाह के नबी गंदे माहौल में जी के आए, बुत परस्ती थी, सब कुछ गंद बला थी, लेकिन आपका इखलाक इतना खूबसूरत था कि लोग आपके बारे में कुछ ना कह सके, तो तुम क्या करते हो? तो सारी बात का खुलासा आज भी इसमें वही सबक है कि जब तासुबात और फिरका वारियत के नाम पे एक गिरोह के लोगों को दूसरे गिरोह से खिलाफ करते हो ना, तो अक्सर में तुम फासिक बन जाते हो। अल्लाह ताला आपको मुझे यहाँ सबक भी देते हैं कि अपने आप को हक के साथ जोड़ो, उसकी दलील अब आपको अगली आयत में मिलेगी। लोरियाँ ना सुनिए, आप लोगों की कही हुई बातें ना सुनिए, अकवाले जरी ना सुनिए, लोगों की मीठी मीठी कड़वी कड़वी बातें ना सुनिए, लेकिन कुरान को ना छोड़िए। قرآن کے ساتھ آپ باقی چیزیں سنیں گے، آپ کو تھوڑے دن بعد ہی لگے گا یہ خام خچس کے بازی ہے، سیدھا سیدھا قرآن ٹھیک ہے، یہی میرے رب کے، دیکھیں اوتھینٹک ہے. آپ تھوڑا جوس لے آتے ہیں لیکن پیور لے کے آتے ہیں، بہت ناسمجھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میٹھا نہیں ہوتا پیور، بھائی اصل لے رہے ہو، چینی ڈال لینا گھر جا کے، لیکن تم نے ضرور پانی ملا شربت لے کر جانا ہے بھی زیادہ اور ہے بھی میٹھا. تو حق تھوڑا لے لیں، کنسنٹریٹڈ لے لیں، پیور لے لیں. دوسری امیزشوں والا دین جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت پیچھے کر دیتا ہے. یہی آپ کے میرے لیے سبق ہے. اب اگلی آیت میں تھوڑی سی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس پہ ایک اور سبق دیا. ولما، آپ نوٹ کیجئے پیچھے کیا تھا، اب کلما، یہاں کیا آ گیا ولما، تھوڑی بات نرم ہوگی. اگر آپ وہ لفظ لکھے نا آوا کلما، کلما میں بھی اصل میں یہ لمبا ہی تھا، آ وا کا، تین لفظ ایڈ کر دیں تو یہ وہی بن جائے گا، لیکن یہاں مراد ہے ولما. اور جب کبھی جا اہم، آیا ان کے پاس رسول، ان کوئی رسول، نکرہ میں آیا ہے، اینی پروفٹ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، سچا بیان کرنے والا، سچائی کرنے والا. پیچھے مصدق کس کی خوبی آئی تھی، قرآن کی، یہاں کس کی آئی، نبی کی. اور آگے جا کے سورت بینہ میں آپ پڑھیں گے نبی کو کیا کہا گیا وہاں، بینہ، نبی کا اپنا وجود مصدق تھا. دیکھیے دو باتیں ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے تو سمجھ آئے گی، قرآن جو کہتا ہے دل کو لگتا ہے کہ نہیں، تو نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا، اس کی زندگی، اس کے معاملات، کیا وہ نہیں لوگوں کو قرآن کی طرف گائیڈ کرتے؟ یہاں مذہبی رہنماؤں کے کردار پہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ اگر تمہارا قرآن نہ بھی سنے نا، تمہاری تبلیغ نہ بھی سنے، وہ تمہیں سر سے پاؤں تک ضرور دیکھیں گے کہ ہاؤ یو لک لائک، ہاؤ یو بیہیو وتھ پیپل، تم کیسے جی رہے ہو، تم نے اپنے زندگی میں فائدے نقصان کے کیا معیار رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا. کان اخلقہ القرآن، حضرت عائشہ نے کہا چلتے پھرتے قرآن تھے. آج اگر یہ بات جو یہاں رسول کی ہے نا، یہ داعی دین، مبلغین، سکالرز اور علمی یا دینی خدمات انجام دینے والوں میں آ جائے نا، لوگ کہتے قرآن کھول لو، تو وہ ریٹرن باتیں ہیں. اور ان بزرگ کو مل لیں، ان علماء کو دیکھ لیں، تو یہ اس کا عملی نمونہ ہے. جس دن یہ میچنگ ہو جاتی ہے، عام لوگ دور نہیں رہتے. لوگ کیا کہتے ہیں، آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نظر کیسے آتی ہیں. پھر لوگ لطیفے بھی بناتے ہیں نا مولویوں کے، کہ مولوی صاحب نے بیگم کو کہا کہ جی وہ گھر میں پیسے رکھے تھے، وہ کدھر گئے؟ کہا وہ کل آپ نے درس دیا تھا نا صدقے والا، تو وہ میں سن کے اتنی متاثر ہوئی، میں نے آ کے سارے صدقہ دے دیے، تو میں نے وہ درس تمہارے لیے تو نہیں دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر جوک ہے یا حقیقت ہے، تو یہ مصدق تو نہیں ہوگا نا. ہمارے بات اور ہے، تمہارے اور ہے، ہم اس سے حق کو تولیں گے، تم اس سے تولنا. تو یہ کانٹراڈکشن جب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے پھر تم انت ہے. نبی کا کردار ہی اگر اللہ نہ کرے کمزور ہوتا تو تمہیں حق تھا، لیکن یہ نبی تو ایسے مصدق لما معہم، یہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیتا ہے اہل کتاب میں سے گروہ کس کو. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، بڑی پیاری بات ہے. پہلی باتیں تو سمجھ ہے نا، اب اس کی ریپیٹیشن ہے، دوبارہ بات کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا ہے اہل کتاب کے پاس، کتاب لے کر تصدیق کرتی بھی چیز، تورات کو ویریفائی کرنے والی یا آج کے دور کی جو بھی بات لے لیجئے، کرتے کیا لوگ، پیچھے ڈال دیتے ہیں. دوبارہ لفظ نبذا، کس کو پیچھے ڈالتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. پہلے ہے پھینکا، نبذا، پھینک دیا دور، جیسے پلیٹ پکڑی پھینکی، پھر کہاں پھینکی، وراء ظہورہم، پس پشت، لیسٹ پرائرٹی دے دی اس کتاب کو. پھر بن کیسے گئے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، اتنے بھولے بنے، اتنے بھولے بنے کہ گویا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا پتا چلا، قوموں کا زوال. اللہ اپنی کتابیں نبیوں کے ذریعے اس لیے دیتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو. اب وہ کتابیں ایک آئینے کی طرح چہرے کی گندگی دکھاتی ہیں، تو پہلے تو اس آئینے کو دور پھینکا، اور پھر دور پھینکنے سے بھی شکل تو دکھ ہی رہی تھی، تو پھر پشت پھیر لی. آج قرآن کے ساتھ بھی اکثریت نے یہی کیا. کتاب کو پیچھے ڈالتے ہیں پہلے, لیز پرائرٹی, پہلے پھینکتے ہیں پھر پیچھے ڈال دیتے ہیں. ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے نا, وراء ظہوری. تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں, آج ہمارے ہاں قرآن کے لیے کیا کہتے ہیں, اس کو پیچھا نہ دکھاؤ. یہ وہ آیت ہے جس پہ میرا خیال ہے ہمارے پاکستانی انڈین کلچر کی آنٹیز اور بزرگ خواتین کہتی ہیں قرآن نو پیچھا نہ کری. جس کمرے میں قرآن پڑھا ہوا ہے ادھر سے پیٹ کر کے نہ جانا, الٹے پھریں گے لیکن قرآن کی طرف سے پیٹ نہیں کریں گے. ہے کہ نہیں یہ کانسیپٹ؟ کیا یہاں فزیکلی پیٹ کرنے کی بات ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا, آپ اس وقت لائنوں میں بیٹھے ہیں تو اب آپ کی بیک نہیں ہو رہی, کتنی گستاخی ہے. چلے جی, آپ بیک نیچے لے کے, آپ کے شولڈر, آپ کی گردن تو پیچھے ہوئی ہے نا, تو پھر تو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اور مجھے آپ نے تھوڑا سا ایکسٹرا پونچھے جگہ دے دی, یہ تو اور برائی. کچھ لوگ آج قرآن کے بارے میں ظاہری باتوں میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ قرآن کے حکم ٹوٹے, قرآن کی باتیں چھوٹیں, قرآن کے پیغامات کو بدلے. کہتے ہیں کیا کرے, وقت اور معاشرے کی مجبوری ہے. بات سمجھ ہے؟ امتوں کا زوال ہے کیونکہ اب آگے جادو کی بات شروع ہونے لگی ہے. جب روحانی علم کو پیچھے ڈال دیں گے نا تو سفلی علم اس کی جگہ لے گا. اور کتنا پیچھے ڈالا, کانہم لا یعلمون, لا یعلمون, جانتے ہی نہیں. یعنی ظاہری تعظیم تو اتنی ہے کہ پیٹھ نہ دکھائیں لیکن احکامات ٹوٹ گئے. یہ سوچتے بھی بات ہے, گویا کہ اللہ کی کتابوں کو پیچھے ڈالا. ذرا ساتھ مسلمانوں کی ہی سوسائٹی پہ غور کرے, کیا ہمارے پیدا ہونے والے بچے سے لے کر کالج تک پہنچنے والے بچے کی زندگی میں قرآن وراء ظہوری ہے یا فرسٹ پرائرٹی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد ماں کو سب سے پہلے کیا فکر لگ جاتی ہے کہ اس کا قرآن ٹھیک ہو جائے, اس کو سمجھ آ جائے, اس کی تفسیر سمجھ آ جائے, اس کا عمل ہو جائے, اس کو حفظ لگ جائے, یا پھر وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار یا کچھ اور سمجھ آ جائے. بات سمجھ ہے؟ کیا آج پیچھے نہیں ڈالا ہوا؟ 10 سال کی بچی ہے, نماز نہیں پڑھتی. 17 سال کی بچی, اس کو نماز آتی بھی نہیں, اور وہ سائنس میں ٹاپ کر جائے, میڈیکل میں پہنچ جائے, ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے. کیا خیال ہے؟ کیا آج ہمارے کلچر پہ یہ چوٹ نہیں ہے؟ خود سے پوچھئے, یہ کتاب آج میری زندگی میں کہاں پڑی ہے؟ کیا آج واقعی اس کتاب کو اہمیت دینے والے ہیں؟ ذرا سی کوئی آندھی چلتی, آندھی تو چھوڑ دیں, ہوا چل جائے نا, سب سے پہلے یہ کتاب ہمارے ہاتھ سے کھسکتی ہے. گھر میں دعوت ہے, سوری لیز پر وراء ظہوری, چھٹی لکھ دے, کچھ نہیں ہوتا. کہنے کی بھی نہیں ضرورت, خود ہی سمجھ جائیں گے جب ہم نہیں آ رہے تو چھٹی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہماری زندگیوں میں اس کتاب کو پیچھے ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے. سچ ہے کہ غلط؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی. نماز کہاں لیٹ ہوتی ہے؟ مہمان آ گئے, نیند آ گئی, ہر چیز ہمیں پیاری ہے. لیکن یہ کتاب نام کی حد تک تو بڑی پیاری ہے, لیکن یہ کتاب جو ہے نا, یہ بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کی ایک پوئم ہے, شاید اس بات کو سمجھا سکوں. گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں, یعنی ہمیں یقین ہے اس کتاب کا, بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ, شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا, یہ ہے وراء ظہوری, میں گھڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ ساتھ لی اقبال اس نے, یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. وراء ظہوری ہے. اور اس کتاب سے لیا کیا؟ یکتبون بایدیہم, کسی نے ایک نسخہ بھیجا. یہ جو روز نیا دین بن بنا کے لوگ بیچارے آپ کو بھیج رہے ہیں نا, اتنی محنت کرتے ہیں, نہ قرآن پڑھیں گے نہ آیتوں کو سمجھیں گے, وہ بیچارے دن رات محنت کیا کر رہے ہیں, آپ کے لیے وظیفے بنائیں. یہ کسی نے ایک وظیفہ بھیجا, بیماریوں سے امن میں رہنے کا نسخہ. 10 मुहर्रम हराम को गुसल करे तो तमाम साल इंशाल्लाह बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि इस दिन आबे जमजम तमाम पानियों में पहुंचता है। जब किताब पीछे डलती है ना, तो फिर उसके बाद बंदा फिर कुछ ऐसी चीजों के आगे पीछे लग जाता है। आज उम्मत के इस हाल पर रोए, वल्ला ही रोने की जरूरत है। हम समझते नहीं हैं, लेकिन आज हम अपनी तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं कि किताब हमारी लीज प्रायोरिटी है। घर में जाकर चेक करें हम सब के कुरान कहाँ रखा है, ऊंचे शेल्फ में जहाँ हाथ भी ना जाए, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए। ज़ाहरी ताज़ीम तो बड़ी है, धूम धाम तो बहुत है, लेकिन असल बात यह कि जिंदगी में कुरान किधर है। हम अपनी जिंदगियों को अगर आज देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि वाकई ये आयतें यहूद की नहीं है, ये आज के मुसलमानों की हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस कुरान के बाद कोई और इल्हामी किताब नहीं उतरनी, वरना वो जो उन बेचारों के कसूरों की लंबी दास्तानें यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी कोई और पढ़ रहा होता जो आखिरी नबी की उम्मत होती। बहुत सोचने की बात है, और इसके लिए सिर्फ आहें भरना, अफसोस करना ये बात नहीं है। असल बात यह है कि हम खुशफहमियों को निकालें। इसलिए बागे वाली आयतें इकट्ठी पढ़ूंगी, जिसमें आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि जब अल्लाह की किताब जिंदगियों से निकलती है तो क्या होता है।